हमारी आज की कहानी है एक रिश्ता प्यारा सा, जिसे लिखा है वीना शर्मा ने। तो चलिए कहानी शुरू करें। एक रिश्ता प्यारा सा। कावेरी ने नज़र भरकर अपनी बेटी वर्षा की ओर देखा। कितनी सुंदर लग रही थी बेबी पिंक कलर की साड़ी में। उसका गुलाबी रंग मानो घुल गया था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों पर लंबी स्याह बरोनिया कुदरतन इतनी घनी और घुंघराली थी कि देखने वालों को यकीन नहीं होता था कि वे असली हैं। मेकअप का कमाल नहीं, उसके गुलाबी होठ नेचुरल लिप ग्लास में और भी दमक उठे थे। कावेरी वर्षा के गले में मोती की लड़ी डालकर मुस्कुराई। वह इतनी प्यारी लग रही थी कि कोई उसे देख कर नापसंद कर ही नहीं सकता। उसने संतुष्ट भाव से गर्दन हिलाई और बाहर जाने के लिए मुड़ी। तभी आकाश व्यस्त भाव से कमरे में घुसा। शीशे के सामने आंचल संभालती वर्षा पर उसकी नज़र पड़ी तो मानो वह पलक झपकना ही भूल गया। वर्षा ने सुकुचा कर नज़रें झुका ली। कावेरी ने देखा तो वह बोल उठी, आओ आकाश, सब काम हो गया क्या? लड़के वाले बस आते ही होंगे। आकाश को मानो किसी ने यथार्थ से धरातल पर लपटा। उसने कावेरी की ओर देखा तो उसकी आंखों में छाई गहरी उदासी ने कावेरी के मन की कहीं गहराई तक छू लिया। आकाश ने लिस्ट उसकी ओर बढ़ाई, जी आंटी, सब काम हो गए हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतलें फ्रिज में रख दी हैं, रस मलाई किचन में गंगा को दे दी है। बाहर निकलते हुए कावेरी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो आकाश और वर्षा एक दूसरे को उदास नज़रों से देखते पाया। वह उस उदासी का कारण जानती थी पर जान कर भी अनजान बन गई थी। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी। वह हड़बड़ाते हुए बोली, आकाश देखना जरा वो लोग आ गए क्या? आकाश तुरंत बाहर चला गया। वर्षा ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। कावेरी अपनी बेटी का दर्द समझती थी पर क्या करती, आकाश बहुत अच्छा लड़का था, हैंडसम और केयरिंग भी। वर्षा के ऑफिस में उसका सीनियर था, दोनों 3 साल से एक दूसरे को जानते थे। घर पर भी उसका खूब आना जाना था। रवि से उसकी पटरी बैठती थी। छुट्टी के दिन रवि को शतरंज खेलने के लिए उसका इंतजार रहता। वे खुले विचारों के थे पर कावेरी आकाश से थोड़ी दूरी ही बनाकर रखती थी। उसका संस्कारी मन उसकी नीची जाति के लिए कभी उसे क्षमा नहीं कर पाता था। आखिर वे लोग उच्च कुलीन ब्राह्मण थे और वर्षा उनकी इकलौती बेटी थी। अपनी दी हुई परवरिश पर उसे पूरा भरोसा था। वही हुआ भी, आकाश और वर्षा ने अपने दिल का दर्द अपने सीने में छुपा लिया और किसी को भनक भी नहीं लगने दी। बाहर से रवि के पुकारने की आवाज़ आई तो कावेरी तेजी से ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गई। सौमित्र और उसके परिवार वालों को वर्षा बहुत पसंद आई। सौमित्र अमेरिका से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री लेकर आया था और अब बेंगलोर में मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था। रवि और कावेरी को भी लोग काफ़ी सुलझे हुए और आधुनिक विचारों के लगे। उन्हें विश्वास था कि उनकी लाडली बिटिया वहाँ खूब खुश रहेगी। जाने से पहले सुमित्र की माँ ने अपने गले से चैन उतारकर वर्षा के गले में डाल दी और हंसकर बोली, बस भाई साहब, आज से वर्षा हमारी हुई, अब जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाइए। रवि ने भी सुमित्र को तिलक लगाकर सोने की एक गिन्नी भेंट की। कुछ दिन बाद शादी की तारीख तय हो गई थी। तिथि 6 माह बाद की निश्चित हुई थी। रवि अपनी इकलौती बिटिया की शादी में कोई कमी नहीं रहने देना चाहते थे, इसीलिए सब इंतजाम बढ़िया से बढ़िया कर रहे थे। उस दिन रवि ऑफिस में आकर बैठे ही थे कि फ़ोन की घंटी बजी। कावेरी पानी लेकर आई और वहीं बैठ गई। रवि के चेहरे पर अन्यासा उत्तर भाव आए उसे आशंकित कर गए। ठीक है भाई साहब, जैसा आप कहें, कहते हुए रवि ने फ़ोन रख दिया। रवि का चिंतित चेहरा देख कर कावेरी बोल उठी, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? किसका फ़ोन था? सुमित्र के पापा का फ़ोन था। वह कह रहे थे कि शादी 5-स्टार होटल से करनी होगी, बाराती भी होटल में ही रुकेंगे। पर होटल में शादी तो बहुत खर्च आएगा, आपने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की? वैसे भी हम बैंक्वेट हॉल बुक करा चुके हैं। कहा था, पर उनका कहना है कि उनका एक ही बेटा है और इस खुशी के मौके पर वे कोई समझौता नहीं करना चाहते। रवि सरकारी विभाग में उच्च अधिकारी थे, पर थे बेहद ईमानदार और असूलों वाले। रिश्वत का एक पैसा भी उन्होंने कभी नहीं पकड़ा। छोटा सा परिवार था, आराम से खर्चा चल जाता था। बेटी की शादी के लिए कुछ पैसा तो उन्होंने जोड़ रखा था, पर अचानक हुई इस फरमाइश से सारा बजट ही गड़बड़ा गया। मरता क्या न करता, आखिर होटल में ही बुकिंग करानी पड़ी। यह तो बस शुरुआत थी। फोन कॉल्स का सिलसिला जारी था, कभी रिश्तेदारों के कीमती कपड़े, तो कभी LCD, तो कभी माइक्रोवेव। फिर एक दिन सुमित्र की माँ का फोन आया, बहन जी छाया ने तो जिद ही पकड़ लिया कि भाई की ससुराल से सोने का सेट ही लेगी। कावेरी का दिल लरज गया, कैसे हो पाएगा, बजट पहले ही डामाडोल हो रहा था। आखिर कावेरी ने निश्चय किया कि वर्षा के लिए जो दो सेट बनवा रखे थे उसी में से एक छाया को दे देंगे। कावेरी और रवि का पूर्ण प्रयास यही रहता कि वर्षा को इस बारे में कुछ पता न चले। सौमित्र का फोन अक्सर आता रहता था, उसकी बातों का टॉपिक हमेशा उसका विदेश प्रवास और उसके विदेशी मित्र ही होते थे। वर्षा हाँ हूँ करते हुए खामोश रह जाती। धीरे धीरे विवाह की तिथि निकट आ रही थी, पर वर्षा को अपने अंदर किसी उमंग या उत्साह का अनुभव नहीं हो रहा था। शादी को सिर्फ एक महीना रह गया था। आज वर्षा ऑफिस आई तो काफ़ी अपसेट लग रही थी। आकाश वर्षा के केबिन में पहुंचा। आकाश को देखकर वह संभली और उसे बैठने का इशारा किया। आकाश ने देखा कि आंसू उसकी पलकों पर ठहरे हुए थे। आकाश बेचैन हो उठा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं आकाश, बस यूं ही। अच्छा चलो बाहर चलकर कुछ खाते हैं, कहकर आकाश बाहर की ओर बढ़ा, तो मजबूरन वर्षा को भी उसके पीछे आना पड़ा। ऑफिस के पास ही एक छोटा सा साफ सुथरा चाइनीज रेस्टोरेंट था। आकाश ने उसके फेवरेट स्वीट कॉर्न सूप और चिली पोटैटो का ऑर्डर कर दिया। फिर वर्षा का हाथ थपथपा कर बोला, इतनी चुप क्यों हो? फिर थोड़ा सा हंस कर बोला, सुमित्र ने कुछ कह दिया क्या? वर्षा ने विद्रूप से कहा, सुमित्र बात कहाँ करते हैं, सिर्फ अपने परिवार, मित्रों और विदेश यात्राओं के बारे में बताते हैं। पर कुछ तो है, बताओ ना प्लीज। दरअसल पापा मम्मी काफ़ी परेशान हैं, पूछने पर कुछ बता नहीं रहे हैं, कह दिया कि शादी के बाद मुझे मिस करेंगे, यही सोचकर परेशान है। पर मुझे यकीन नहीं हुआ, कई दिनों की कोशिश कर रही थी पर रात पता चला, कहते कहते वर्षा का गला भर आया। क्या पता चला, हम बोलो। आकाश अधीर हो उठा, तभी वेटर उनका ऑर्डर सर्व करने लगा और दोनों खामोश हो गए। वर्षा की आंखों के आगे रात का दृश्य साकार हो गया। देर रात तक नींद न आने के कारण वह अपने कमरे की बालकोनी में अंधेरे में झूले पर बैठी थी। तभी बराबर के कमरे में मम्मा का चिंतित स्वर उसके कानों में पड़ा, और अब 1 लाख का इंतजाम कहाँ से करेंगे? धीरे बोलो कावेरी, कहीं वर्षा सुन न ले, पापा का स्वर था। इन लोगों की मांग तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, आखिर कहाँ तक पूरी करेंगे? मम्मा की कांपती आवाज़ सुनाई दी। तुम चिंता मत करो कावेरी, अभी मैं जिंदा हूँ, घर गिरवी रखकर पैसे उठा लूँगा। पापा ने मम्मा की तसल्ली देने की कोशिश की तो वे बिलक उठी। वर्षा सिर से पांव तक कांप उठी, आखिर ये सब क्या हो रहा था? आकाश को खोने के गम में वह इतनी अंधी हो गई थी कि उसे अपने माँ बाप के दिन ब दिन कुमालाते चेहरे भी दिखाई नहीं दिए थे। वह खुद को रोक नहीं पाई, जाकर पापा के कमरे का दरवाज़ा खटखटा डाला। दरवाज़ा मम्मा ने खोला, उनकी आंखें अभी तक गिली थी। वर्षा को देखकर वे एकदम चौंक उठी, क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही क्या? वर्षा ने मम्मा का चेहरा देखा और पापा से बोली, मैंने सब सुन लिया है पापा, मैं सुमित्रों से शादी नहीं करूँगी। मम्मा पापा पहले तो सुनकर सन रह गए, फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने वर्षा को अपनी इज्जत और परिवार के सम्मान का वास्ता देकर सुमित्रों के साथ विवाह करने को राजी कर लिया। आकाश ने वर्षा की नज़रों के सामने चुटकी बजाई, तो मानो वह सोते से जागी। बताओ न प्लीज, आखिर हुआ क्या है, मेरे सब्र का इम्तहान मत लो। वर्षा सूप से उठता हुआ धुआं देख रही थी, उसके दिलो दिमाग पर भी ऐसी ही धुन छाई हुई थी। शायद आकाश ही कोई रास्ता सुझा सके, आखिर वो उसका अजीज दोस्त था। वर्षा ने धीरे धीरे उसे सारी बात बता दी, फिर भीगे स्वर में बोली, जब से रिश्ता हुआ है रोज़ फरमाइशें, पापा ने कभी रिश्वत नहीं ली, फिर बेचारे कहाँ से इतनी मांगे पूरी करेंगे, अब तो फंड से भी सब निकाल चुके हैं, मैं भी अपने पैसे पहले ही मम्मा को जबरन कसम देकर दे चुकी हूँ। वर्षा ने होले से चुप खेली। फिर कुछ पल रुक कर बोली, मैंने तो बहुत मना किया शादी के लिए, पर मम्मा पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। परिवार के मान सम्मान के लिए वे अपनी जान भी दे सकते हैं, पता नहीं अब क्या होगा। उन लोगों के भविष्य के बारे में सोचती हूँ तो मन कांप उठता है, कहीं मेरे कारण उनके सर से छत भी ना छिन जाए। आकाश खामोशी से सब सुनता रहा, फिर शांत स्वर में बोला, तुम आराम से घर जाओ, मैं शाम को घर आऊँगा, तब बात करेंगे। चलो अब फटाफट सूप पियो, ठंडा हो रहा है। शाम के वक्त रवि और कावेरी ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। रवि कावेरी को बता रहे थे कि उन्होंने घर गिरवी रखने की बात कर ली है, कल कागज तैयार हो जाएंगे। वर्षा भी ऑफिस से आ चुकी थी और फ्रेश होने अपने कमरे में चली गई। तभी आकाश ने कमरे में प्रवेश किया। आकाश को देखकर वह अभी खिल उठे। आप आकाश कहाँ थे इतने दिन, पूरे एक हफ्ते में आए हो? आकाश दोनों के पांव छूकर सोफे पर बैठ गया। सॉरी अंकल, ऑफिस में काम बहुत था, फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए थे, इसी चक्कर में इतना व्यस्त रहा कि चाहते हुए भी नहीं आ सका। कावेरी ने चाय का कप उसकी ओर बढ़ाया तो कावेरी का चेहरा वह दिखता ही रह गया। आंखों के चार ओर स्याह घेरे, अभी भी आंखों में नमी थी। यह क्या आंटी, आप रो रही हैं? कुछ नहीं, कावेरी ने आंचल से आंखें पोंछते हुए कहा, शायद आंख में कुछ गिर गया है। आकाश ने कप मेज पर रख दिया और बोला, मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे कुछ नहीं बताएंगे, पर वर्षा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सुनकर रवि और कावेरी के चेहरे उतर गए। आकाश ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और मेज पर रख दी। रवि चौंक गए, यह क्या है आकाश? अंकल मना मत कीजिएगा, यह मेरी अब तक की कमाई है, 1 लाख से ऊपर नहीं है। आप वर्षा की शादी में कोई कमी मत रखिएगा, वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, इतना हक तो मेरा बनता ही है। कहते कहते उसका गला भर आ गया। कावेरी तो मानो संज्ञा सुन सी बैठी थी। ये कैसा रिश्ता था इन दोनों के बीच, कितना प्यार करता था आकाश वर्षा को, कैसे निस्वार्थ प्रेम था उसका, जहाँ कुछ पाने की चाहत नहीं वरन अपना सर्वस्व भी वो अपनी खुशी से अर्पण कर रहा था। क्या कोई और उससे ज़्यादा प्यार उसकी बेटी को दे सकेगा? कितनी मूर्ख थी वह, यह जो जाति भेद की संकीर्ण मानसिकता से जकड़ी इन दो बेहद प्यार करने वाले दिलों को अलग करने का पाप करने जा रही थी, सिर्फ उसके कारण दोनों ने अपनी मोहब्बत अपने दिलों में दफन कर ली थी। नहीं, अब वैसा नहीं होने देगी। तमाम सार्वजनिक वर्जनाएं, मान अपमान इस निश्चल प्रेम के आगे नग्न हो उठे थे। हीरा उसकी मुट्ठी में था और वह कांच के टुकड़े को असली हीरा समझ बैठी थी। कावेरी समझाओ इसको, रवि की आवाज थी, कानों में पड़ी तो वह सजग हो गई। अब तक वर्षा भी वहाँ आ गई थी। अंकल मेरी जगह आपका बेटा होता तो क्या तब आप नहीं लेते? अब तक खामोश बैठी कावेरी अपनी जगह से उठी और आकाश का हाथ अपने हाथ में लेकर स्थिर स्वर में बोली, अपना बेटा भी शायद ये ना करता जो तुमने किया। भाव वेल स्वर में बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। फिर उसने निकट खड़ी वर्षा का हाथ पकड़कर आकाश के हाथ में रख दिया और भरे कंठ से बोली, हमारी बेटी का जीवन भर ऐसे ही ख्याल रखना बेटा। सब आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से कावेरी का मुंह देख रहे थे। रवि हंसकर आकाश से बोले, आकाश बेटा जल्दी से माँ के पैर छू लो, कहीं इसका इरादा न बदल जाए। आकाश ने वर्षा का हाथ मजबूती से थाम लिया और दोनों कावेरी के पाँव पर झुक गए। उसने उन्हें अपने गले लगा लिया। वर्षा कावेरी से कस कर लिपट गई, उसकी आंखें अविरल बरस रही थी, सबकी आंखें नम थी पर ये खुशी के आंसू थे। सामने झिलमिलाता सुनहरा भविष्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पुराना घर, जिसे लिखा है विमला परमहंस ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, पुराना घर। सुमित की आज पापा से अच्छी खासी बहस हो गई थी। सुमित चाहता था कि शहर के परकोटे में बने घर को अब बेच दिया जाए। आए दिन पुराने घर के रखरखाव पर काफी खर्च हो रहा था। एक दो दिन में गोविंद देव जी के मंदिर जाते तो पुराने मकान पर चले जाते। और पुरानी पहचान के लोगों से बातचीत करके आ जाते। पुराने मकान में बैठक में शतरंज और ताश की बाजी जमती तो कभी भजन के कार्यक्रम होते। रामदयाल के लिए पुराने मकान का मोह छोड़ना आसान नहीं था। पत्नी के गुजरने के बाद वे दिन का ज्यादातर समय पुराने मकान पर बिताकर शाम को लौटते थे। बेटा सुमित और उसकी पत्नी नेहा चाहते थे कि पापा शहर जाना छोड़ दें, पुराना मकान बेच देंगे तो पैसे आ जाएंगे। रामदयाल आज सुमित पर बरस ही पड़े। पुराना तो मैं भी हो गया हूँ, मुझ पर भी बेकार खर्च हो रहा है, मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। रामदयाल ने यह कहते हुए सुमित को मकान को एक शर्त पर बेचने की अनुमति दी कि वह पुराने मकान में जाकर कुछ घंटे एकांत में बिता कर आए। सुमित का सारा बचपन युवावस्था का बड़ा भाग वहीं तो बीता था। नया आवास तो कार लेने के बाद पार्किंग की समस्या सहित आसपास का माहौल दूषित होने के कारण बनवाया था। सुमित ने भी सोचा चलो पापा मान गए हैं तो उनकी बात मान लेने में क्या हर्ज है। नेहा भी पुराने मकान में रखे रसोई के पुराने बर्तन सहित कुछ अन्य वस्तुएं लाने को अनेक बार कह चुकी थी, दोनों ही काम हो जाएंगे। रविवार को जाना तय कर लिया गया। रामदयाल ने पुराने मकान पर जाना बंद कर दिया और घर में गुमसुम बैठे रहने लगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होने लगी। सुमित समझ गया कि पापा का शहर जाना बंद होने के कारण यह सब हो रहा है। सुमित रविवार को पुराने घर में गया तो रसोई घर में गया, उसे ऐसा लगा कि घर की दीवारें उसे कुछ कह रही हों। चूल्हे के पास ऐसा अनुभव हुआ कि माँ बैठी खाना पका रही है। टाट पर रखे बर्तन उतारे तो उसमें वही थाली कटोरी और चम्मच उसके हाथ में आ गई जिसमें माँ उसे खाना परोसकर खिलाती थी। ना जाने भावनाओं ने कब उभर कर आँखों से बहना शुरू कर दिया। सुमित बर्तनों को सीने से भींच कर रो पड़ा। नेहा घबरा गई। सुमित बताने लगा कि देखो यहाँ माँ खाना बनाती थी, मैं यहाँ बैठकर खाना खाता था, इधर देखो वहाँ बैठकर पढ़ाई करता था। सुमित भावनाओं में बहने लगा था। आखिर में कहा, नेहा यहाँ की हर दीवार हर कोना मेरी यादों में बसा है, ऐसा लग रहा है कि ये सब मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जब मेरी ये हालत है तो पापा ने तो यहाँ अपना बचपन, विवाह के बाद का जीवन और अपने बच्चों की परवरिश सब कुछ यहीं पर तो जिया है। मैं जीवन के अंतिम चरण में उनसे उनकी पुरानी यादों को नहीं छीनना चाहता। मैं समझ गया कि पापा को यह मकान बेचने के नाम से ही इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। वे रोजाना यहाँ आकर अपनी यादों को जीते हैं, पुराने संगी साथियों से मेल जोल से उनका समय व्यतीत हो जाता है। देखो ना, 4-5 दिन में ही गुमसुम होकर बीमार हो गए हैं। नेहा भी पिघल गई और बोली, यहाँ से कोई भी सामान लेकर नहीं चलना है, घर चलो, लेकिन इससे पहले पापा के कमरे को अच्छे से संवार दो, नए गद्दे सोफा और पर्दे लगा देते हैं। पापा के सारे दोस्तों को कल पार्टी दे दो। सुमित ने पुराने घर के आसपास रहने वाले रामदयाल के मित्रों और हम उम्र लोगों को सारी जानकारी दी और मकान नहीं बेचने के बारे में बताया तो वे सारे प्रसन्न हो रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई हो। सुमित ने घर जाकर, पापा कल पुराने घर चलना है, कोई खरीदार आ रहा है, वह आपसे ही बात कर मकान खरीदने का अंतिम रूप देना चाहता है। दुखी मन से रामदयाल तैयार हो गए। अगले दिन सुमित सुबह से ही ना जाने किस काम में व्यस्त हो गया। शाम को पुराने पर घर पर गए तो देखा कि सजावट हो रही है। परिवार के निकट सदस्यों के साथ उनके सारे पुराने मित्र भी बाहर खड़े हैं। सुमित ने पुराने घर में अंदर घुसते हुए कहा, पापा हम यह घर नहीं बेच रहे, आप यहाँ रोजाना आइए और अपने मित्रों के साथ समय बिताइए। रामदयाल ने देखा कि उनके कमरे की साज सज्जा ही बदल गई है। कमरे के पास ही एक छोटा कमरा था, वहाँ पर एक छोटी सी रसोई की व्यवस्था हो गई थी और टॉयलेट भी बदल गया था। रामदयाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पलट कर सुमित को गले से लगा लिया और उनके सारे साथी हर्ष ध्वनि करने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पुराना घर, जिसे लिखा है विमला परमहंस ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराना घर। सुमित की आज पापा से अच्छी खासी बहस हो गई थी। सुमित चाहता था कि शहर के परकोटे में बने घर को अब बेच दिया जाए। आए दिन पुराने घर के रख रखाव पर काफ़ी खर्च हो रहा था। एक दो दिन में गोविंद देव जी के मंदिर जाते तो पुराने मकान पर चले जाते और पुरानी पहचान के लोगों से बातचीत करके आ जाते। पुराने मकान में बैठक में शतरंज और ताश की बाजी जमती तो कभी भजन के कार्यक्रम होते। रामदयाल के लिए पुराने मकान का मोह छोड़ना आसान नहीं था। पत्नी के गुजरने के बाद वे दिन का ज़्यादातर समय पुराने मकान पर बिताकर शाम को लौटते थे। बेटा सुमित और उसकी पत्नी नेहा चाहते थे कि पापा शहर जाना छोड़ दें, पुराना मकान बेच देंगे तो पैसे आ जाएंगे। रामदयाल आज सुमित पर बरस ही पड़े। पुराना तो मैं भी हो गया हूँ, मुझ पर भी बेकार खर्च हो रहा है, मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। रामदयाल ने यह कहते हुए सुमित को मकान को एक शर्त पर बेचने की अनुमति दी कि वह पुराने मकान में जाकर कुछ घंटे एकांत में बिता कर आए। सुमित का सारा बचपन युवा अवस्था का बड़ा भाग वहीं तो बीता था। नया आवास तो कार लेने के बाद पार्किंग की समस्या सहित आसपास का माहौल दूषित होने के कारण बनवाया था। सुमित ने भी सोचा चलो पापा मान गए हैं तो उनकी बात मान लेने में क्या हर्ज है। नेहा भी पुराने मकान में रखे रसोई के पुराने बर्तन सहित कुछ अन्य वस्तुएं लाने को अनेक बार कह चुकी थी। दोनों ही काम हो जाएंगे। रविवार को जाना तय कर लिया गया। रामदयाल ने पुराने मकान पर जाना बंद कर दिया और घर में गुमसुम बैठे रहने लगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होने लगी। सुमित समझ गया कि पापा का शहर जाना बंद होने के कारण यह सब हो रहा है। सुमित रविवार को पुराने घर में गया तो रसोई घर में गया। उसे ऐसा लगा कि घर की दीवारें उसे कुछ कह रही हों। चूल्हे के पास ऐसा अनुभव हुआ कि माँ बैठी खाना पका रही है। टाट पर रखे बर्तन उतारे तो उसमें वही थाली कटोरी और चम्मच उसके हाथ में आ गई जिसमें माँ उसे खाना परोसकर खिलाती थी। ना जाने भावनाओं ने कब उभर कर आँखों से बहना शुरू कर दिया। सुमित बर्तनों को सीने से भींच कर रो पड़ा। नेहा घबरा गई। सुमित बताने लगा कि देखो यहाँ माँ खाना बनाती थी, मैं यहाँ बैठकर खाना खाता था, इधर देखो वहाँ बैठकर पढ़ाई करता था। सुमित भावनाओं में बहने लगा था। आखिर में कहा, नेहा यहाँ की हर दीवार हर कोना मेरी यादों में बसा है। ऐसा लग रहा है कि ये सब मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जब मेरी ये हालत है तो पापा ने तो यहाँ अपना बचपन, विवाह के बाद का जीवन और अपने बच्चों की परवरिश सब कुछ यहीं पर तो जिया है। मैं जीवन के अंतिम चरण में उनसे उनकी पुरानी यादों को नहीं छीनना चाहता। मैं समझ गया कि पापा को यह मकान बेचने के नाम से ही इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। वे रोजाना यहाँ आकर अपनी यादों को जीते हैं। पुराने संगी साथियों से मेल जोल से उनका समय व्यतीत हो जाता है। देखो ना, 4-5 दिन में ही गुमसुम होकर बीमार हो गए हैं। नेहा भी पिघल गई और बोली, यहाँ से कोई भी सामान लेकर नहीं चलना है, घर चलो, लेकिन इससे पहले पापा के कमरे को अच्छे से सवार दो, नए गद्दे सोफा और पर्दे लगा देते हैं। पापा के सारे दोस्तों को कल पार्टी दे दो। सुमित ने पुराने घर के आसपास रहने वाले रामदयाल के मित्रों और हम उम्र लोगों को सारी जानकारी दी और मकान नहीं बेचने के बारे में बताया तो वे सारे प्रसन्न हो रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ मिल गई हो। सुमित ने घर जाकर, पापा कल पुराने घर चलना है, कोई खरीदार आ रहा है, वह आपसे ही बात कर मकान खरीदने का अंतिम रूप देना चाहता है। दुखी मन से रामदयाल तैयार हो गए। अगले दिन सुमित सुबह से ही ना जाने किस काम में व्यस्त हो गया। शाम को पुराने पर घर पर गए तो देखा कि सजावट हो रही है। परिवार के निकट सदस्यों के साथ उनके सारे पुराने मित्र भी बाहर खड़े हैं। सुमित ने पुराने घर में अंदर घुसते हुए कहा, पापा हम यह घर नहीं बेच रहे, आप यहाँ रोजाना आइए और अपने मित्रों के साथ समय बिताइए। रामदयाल ने देखा कि उनके कमरे की साज सज्जा ही बदल गई है। कमरे के पास ही एक छोटा कमरा था, वहाँ पर एक छोटी सी रसोई की व्यवस्था हो गई थी और टॉयलेट भी बदल गया था। रामदयाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पलट कर सुमित को गले से लगा लिया और उनके सारे साथी हर्ष ध्वनि करने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पुराना घर, जिसे लिखा है विमला परमहंस ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराना घर। सुमित की आज पापा से अच्छी खासी बहस हो गई थी। सुमित चाहता था कि शहर के परकोटे में बने घर को अब बेच दिया जाए। आए दिन पुराने घर के रखरखाव पर काफी खर्च हो रहा था। एक दो दिन में गोविंद देव जी के मंदिर जाते तो पुराने मकान पर चले जाते और पुरानी पहचान के लोगों से बातचीत करके आ जाते। पुराने मकान में बैठक में शतरंज और ताश की बाजी जमती तो कभी भजन के कार्यक्रम होते। रामदयाल के लिए पुराने मकान का मोह छोड़ना आसान नहीं था। पत्नी के गुजरने के बाद वे दिन का ज्यादातर समय पुराने मकान पर बिताकर शाम को लौटते थे। बेटा सुमित और उसकी पत्नी नेहा चाहते थे कि पापा शहर जाना छोड़ दें, पुराना मकान बेच देंगे तो पैसे आ जाएंगे। रामदयाल आज सुमित पर बरस ही पड़े। पुराना तो मैं भी हो गया हूँ, मुझ पर भी बेकार खर्च हो रहा है, मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। रामदयाल ने यह कहते हुए सुमित को मकान को एक शर्त पर बेचने की अनुमति दी कि वह पुराने मकान में जाकर कुछ घंटे एकांत में बिता कर आए। सुमित का सारा बचपन युवा अवस्था का बड़ा भाग वहीं तो बीता था। नया आवास तो कार लेने के बाद पार्किंग की समस्या सहित आसपास का माहौल दूषित होने के कारण बनवाया था। सुमित ने भी सोचा चलो पापा मान गए हैं तो उनकी बात मान लेने में क्या हर्ज है। नेहा भी पुराने मकान में रखे रसोई के पुराने बर्तन सहित कुछ अन्य वस्तुएं लाने को अनेक बार कह चुकी थी। दोनों ही काम हो जाएंगे। रविवार को जाना तय कर लिया गया। रामदयाल ने पुराने मकान पर जाना बंद कर दिया और घर में गुमसुम बैठे रहने लगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होने लगी। सुमित समझ गया कि पापा का शहर जाना बंद होने के कारण यह सब हो रहा है। सुमित रविवार को पुराने घर में गया तो रसोई घर में गया। उसे ऐसा लगा कि घर की दीवारें उसे कुछ कह रही हों। चूल्हे के पास ऐसा अनुभव हुआ कि माँ बैठी खाना पका रही है। टाट पर रखे बर्तन उतारे तो उसमें वही थाली कटोरी और चम्मच उसके हाथ में आ गई जिसमें माँ उसे खाना परोस कर खिलाती थी। ना जाने भावनाओं ने कब उभर कर आंखों से बहना शुरू कर दिया। सुमित बर्तनों को सीने से भींच कर रो पड़ा। नेहा घबरा गई। सुमित बताने लगा कि देखो यहाँ माँ खाना बनाती थी, मैं यहाँ बैठकर खाना खाता था, इधर देखो वहाँ बैठकर पढ़ाई करता था। सुमित भावनाओं में बहने लगा था। आखिर में कहा, नेहा यहाँ की हर दीवार हर कोना मेरी यादों में बसा है। ऐसा लग रहा है कि ये सब मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जब मेरी ये हालत है तो पापा ने तो यहाँ अपना बचपन, विवाह के बाद का जीवन और अपने बच्चों की परवरिश सब कुछ यहीं पर तो जिया है। मैं जीवन के अंतिम चरण में उनसे उनकी पुरानी यादों को नहीं छीनना चाहता। मैं समझ गया कि पापा को यह मकान बेचने के नाम से ही इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। वे रोजाना यहाँ आकर अपनी यादों को जीते हैं। पुराने संगी साथियों से मेल जोल से उनका समय व्यतीत हो जाता है। देखो ना, चार पाँच दिन में ही गुमसुम होकर बीमार हो गए हैं। नेहा भी पिघल गई और बोली, यहाँ से कोई भी सामान लेकर नहीं चलना है, घर चलो, लेकिन इससे पहले पापा के कमरे को अच्छे से संवार दो। नए गद्दे, सोफा और पर्दे लगा देते हैं। पापा के सारे दोस्तों को कल पार्टी दे दो। सुमित ने पुराने घर के आसपास रहने वाले रामदयाल के मित्रों और हम उम्र लोगों को सारी जानकारी दी और मकान नहीं बेचने के बारे में भी बताया तो वे सारे प्रसन्न हो रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई हो। सुमित ने घर जाकर, पापा कल पुराने घर चलना है, कोई खरीदार आ रहा है, वह आपसे ही बात कर मकान खरीदने का अंतिम रूप देना चाहता है। दुखी मन से रामदयाल तैयार हो गए। अगले दिन सुमित सुबह से ही ना जाने किस काम में व्यस्त हो गया। शाम को पुराने पर घर पर गए तो देखा कि सजावट हो रही है। परिवार के निकट सदस्यों के साथ उनके सारे पुराने मित्र भी बाहर खड़े हैं। सुमित ने पुराने घर में अंदर घुसते हुए कहा, पापा हम यह घर नहीं बेच रहे, आप यहाँ रोजाना आइए और अपने मित्रों के साथ समय बिताइए। रामदयाल ने देखा कि उनके कमरे की साज सज्जा ही बदल गई है। कमरे के पास ही एक छोटा कमरा था, वहाँ पर एक छोटी सी रसोई की व्यवस्था हो गई थी और टॉयलेट भी बदल गया था। रामदयाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पलट कर सुमित को गले से लगा लिया और उनके सारे साथी हर्ष ध्वनि करने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पुराना घर, जिसे लिखा है विमला परमहंस ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, पुराना घर। सुमित की आज पापा से अच्छी खासी बहस हो गई थी। सुमित चाहता था कि शहर के परकोटे में बने घर को अब बेच दिया जाए। आए दिन पुराने घर के रखरखाव पर काफी खर्च हो रहा था। एक दो दिन में गोविंद देव जी के मंदिर जाते तो पुराने मकान पर चले जाते और पुरानी पहचान के लोगों से बातचीत करके आ जाते। पुराने मकान में बैठक में शतरंज और ताश की बाजी जमती तो कभी भजन के कार्यक्रम होते। रामदयाल के लिए पुराने मकान का मोह छोड़ना आसान नहीं था। पत्नी के गुजरने के बाद वे दिन का ज्यादातर समय पुराने मकान पर बिताकर शाम को लौटते थे। बेटा सुमित और उसकी पत्नी नेहा चाहते थे कि पापा शहर जाना छोड़ दें, पुराना मकान बेच देंगे तो पैसे आ जाएंगे। रामदयाल आज सुमित पर बरस ही पड़े। पुराना तो मैं भी हो गया हूँ, मुझ पर भी बेकार खर्च हो रहा है, मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। रामदयाल ने यह कहते हुए सुमित को मकान को एक शर्त पर बेचने की अनुमति दी कि वह पुराने मकान में जाकर कुछ घंटे एकांत में बिता कर आए। सुमित का सारा बचपन युवा अवस्था का बड़ा भाग वहीं तो बीता था। नया आवास तो कार लेने के बाद पार्किंग की समस्या सहित आसपास का माहौल दूषित होने के कारण बनवाया था। सुमित ने भी सोचा, चलो पापा मान गए हैं तो उनकी बात मान लेने में क्या हर्ज है। नेहा भी पुराने मकान में रखे रसोई के पुराने बर्तन सहित कुछ अन्य वस्तुएं लाने को अनेक बार कह चुकी थी, दोनों ही काम हो जाएंगे। रविवार को जाना तय कर लिया गया। रामदयाल ने पुराने मकान पर जाना बंद कर दिया और घर में गुमसुम बैठे रहने लगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होने लगी। सुमित समझ गया कि पापा का शहर जाना बंद होने के कारण यह सब हो रहा है। सुमित रविवार को पुराने घर में गया तो रसोई घर में गया। उसे ऐसा लगा कि घर की दीवारें उसे कुछ कह रही हों। चूल्हे के पास ऐसा अनुभव हुआ कि माँ बैठी खाना पका रही है। टाट पर रखे बर्तन उतारे तो उसमें वही थाली, कटोरी और चम्मच उसके हाथ में आ गए जिसमें माँ उसे खाना परोस कर खिलाती थी। ना जाने भावनाओं ने कब उभर कर आंखों से बहना शुरू कर दिया। सुमित बर्तनों को सीने से भीज कर रो पड़ा। नेहा घबरा गई। सुमित बताने लगा कि देखो यहाँ माँ खाना बनाती थी, मैं यहाँ बैठ कर खाना खाता था, इधर देखो वहाँ बैठ कर पढ़ाई करता था। सुमित भावनाओं में बहने लगा था। आखिर में कहा, नेहा यहाँ की हर दीवार हर कोना मेरी यादों में बसा है। ऐसा लग रहा है कि ये सब मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जब मेरी ये हालत है तो पापा ने तो यहाँ अपना बचपन, विवाह के बाद का जीवन और अपने बच्चों की परवरिश सब कुछ यहीं पर तो जिया है। मैं जीवन के अंतिम चरण में उनसे उनकी पुरानी यादों को नहीं छीनना चाहता। मैं समझ गया कि पापा को यह मकान बेचने के नाम से ही इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। वे रोजाना यहाँ आकर अपनी यादों को जीते हैं। पुराने संगी साथियों से मेल जोल से उनका समय व्यतीत हो जाता है। देखो ना, 4-5 दिन में ही गुमसुम होकर बीमार हो गए हैं। नेहा भी पिघल गई और बोली, यहाँ से कोई भी सामान लेकर नहीं चलना है, घर चलो, लेकिन इससे पहले पापा के कमरे को अच्छे से संवार दो, नए गद्दे, सोफा और पर्दे लगा देते हैं। पापा के सारे दोस्तों को कल पार्टी दे दो। सुमित ने पुराने घर के आसपास रहने वाले रामदयाल के मित्रों और हम उम्र लोगों को सारी जानकारी दी और मकान नहीं बेचने के बारे में बताया तो वे सारे प्रसन्न हो रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई हो। सुमित ने घर जाकर, पापा कल पुराने घर चलना है, कोई खरीदार आ रहा है, वह आपसे ही बात कर मकान खरीदने का अंतिम रूप देना चाहता है। दुखी मन से रामदयाल तैयार हो गए। अगले दिन सुमित सुबह से ही ना जाने किस काम में व्यस्त हो गया। शाम को पुराने पर घर पर गए तो देखा कि सजावट हो रही है। परिवार के निकट सदस्यों के साथ उनके सारे पुराने मित्र भी बाहर खड़े हैं। सुमित ने पुराने घर में अंदर घुसते हुए कहा, पापा हम यह घर नहीं बेच रहे, आप यहाँ रोजाना आइए और अपने मित्रों के साथ समय बिताइए। रामदयाल ने देखा कि उनके कमरे की साज सज्जा ही बदल गई है। कमरे के पास ही एक छोटा कमरा था, वहाँ पर एक छोटी सी रसोई की व्यवस्था हो गई थी और टॉयलेट भी बदल गया था। रामदयाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पलट कर सुमित को गले से लगा लिया और उनके सारे साथी हर्ष ध्वनि करने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।